ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26 अक्टूबर 1968। रूहानी बाप और अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम फादर। सुप्रीम फादर कहते हैं स्पिरिचुअल फादर नहीं कहते। हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअल फादर तो बहुतों को समझ लेते हैं, लेकिन सुप्रीम फादर बापों के बाप को भी समझते हैं, जिसको मुसलमानी भाषा में कहा जाता है रूहानी बाप। सत्युग में तुम जब चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि कोई भी दूसरी भाषा थोड़े ही होगी। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वो ही चलेगी। फिर बाद में वो भाषा बदली होती जाती है, अनेक अनेक भाषाएं हो जाती हैं। जैसा जैसा राजा वैसी उनकी भाषा चलती है। अब ये तो सभी बच्चे जानते हैं, राजाओं के ने अपने अपनी भाषा चलाई। सभी सेंटर्स पर जो भी बच्चे हैं सभी की एक ही भाषा होती है। अपन को आत्मा समझना और बाप को याद करना है ताकि भूत सभी भाग जाएं, क्योंकि बाप है पतित पावन। ये पांच भूतों की तो सभी में प्रवेशता है, आत्मा में ही पांच भूतों की प्रवेशता होती है। फिर उन भूतों का विकारों का नाम भी गिना जाता है। पहले पहले है देह अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो बोलो सर्वव्यापी तो भूत हैं। सभी आत्माओं में ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है या विराजमान है। तो समझना चाहिए कि परमात्मा में फिर पांच भूतों की प्रवेशता कैसे होगी। एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। देखो दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अभी जज करो। हरेक के शरीर में आत्मा है, आत्मा में पांच विकार हैं। पांच विकार टाइम टू टाइम प्रवेश करती है ना, परंतु सतयुग में तो ये पांच भूत होते ही नहीं। ये है ही भूतों की दुनिया और वो है देवताओं की दुनिया, उसमें तो कोई भूत नहीं होता है, नाम निशान नहीं। उस दुनिया का नाम ही है डीटी वर्ल्ड और ये तो है डेविल वर्ल्ड। डेविल असुर को कहा जाता है। कितना रात दिन का फर्क है। कब कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो बोलो नहीं, सर्वव्यापी तो आत्मा है और आत्माओं में पांच भूत व्यापी है। ये पांच विकार सर्वव्यापी हैं। अभी तुम तो चेंज होते हो, चेंज होते होते वहां तुम्हारे में कोई भी विकार कोई भी अवगुण नहीं रहेगा, तुम सर्वगुण संपन्न बन जाते हो, सोलह कला संपूर्ण बन जाते हो। पहले थे सर्वगुण संपन्न, फिर नीचे उतरते गए, तो अभी इस चक्र का भी तुमको मालूम पड़ा है कि हम 84 का चक्र कैसे फिरे हैं। अभी हम सो आत्मा का दर्शन करते हैं, आत्मा को इस चक्र का नॉलेज हुआ, उठते बैठते चलते फिरते तुमको ये नॉलेज बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए। बाप ही नॉलेज पढ़ाते हैं और बाप भारत में ही आकर के ये नॉलेज पढ़ाते हैं। क्या हैं? विदेशों में आकर नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? भारत में और विदेशों में क्या अंतर है? बल पतित होता है, पतित होने के बावजूद भी भारतवासी प्रयासरत यही रहते हैं कि हम रोशनी में रहें, तमसो मां ज्योतिर्गमय। उन भूतों का नारा होता है अंधेरा कायम रहे और हमारा नारा होता है इन भूतों को भगाना है। कहते हैं ना हमारा भारत, वास्तव में ये हिंदुस्तान तो फॉरेनर्स ने रखा है, ये रांग नाम है। तुम जानते हो जब भारत स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था, न्यू वर्ल्ड थी। आज भी न्यू वर्ल्ड की यादगार में नई दिल्ली कहते हैं ना, नई दिल्ली सारी पत्थरों की बनी हुई है, दिल्ली का नाम असल में दिल्ली नहीं था। परिस्तान कहते थे, अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर न नई दिल्ली कहेंगे न पुरानी ही कहेंगे, परिस्तान बन जाएगा। कहां बन जाएगा परिस्तान है? सतयुग में बन जाएगा परिस्तान। जो नाम वाला है वो संगम युग का नाम है, ज्ञान परियों का स्थान है, ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वालियों का स्थान। ऐसे तो दिल्ली को कैपिटल भी कहते हैं। तो जब इन्हें लक्ष्मीनारायण का राज्य होगा तो और कोई भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो हमारा राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। क्या कहा? अभी भारत सारा हमारा नहीं है, दिल्ली भी हमारी नहीं है, कैपिटल भी हमारी नहीं है। अभी क्या है? हमारा भारत देश है। परंतु भारत देश में राजा ही तो है नहीं। क्या नाम हमारा कौन है? जो सदैव भामन रोशनी, ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो हमारा है। द्वापर कलयुग में भी बल भक्ति मार्ग रहा तो भी सभी भारतवासियों ने फॉलो किसको किया? ज्यादा बुद्धि का आकर्षण केंद्र कौन रहा? शास्त्र ही तो रहे। द्वापर के शुरू में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी, अर्थात रोशनी थी, तो कोई ने तो लिखे होंगे। किसने लिखे है? उसने लिखे जो संगम में भी रोशनी में रत रहा और द्वापर के आदि से लेकर अंत तक भी ज्ञान रोशनी में रत रहने वाला है, तो कहते हैं हमारा भारत देश। परंतु राजा ही तो नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान चक्र चलता है। बरोबर इस विश्व में पहले पहले देवी देवताओं का राज्य था और किसी का भी नहीं था। जमुना का कंठा, उनको परिस्थान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल भी दिल्ली ही रही है, तो दिल्ली पर सभी की कशिश होती है, हैं? ऐसा क्यों? सिर्फ देवताओं की कैपिटल दिल्ली रही है, सभी धर्म वालों की कैपिटल तो दिल्ली नहीं रही है। कि रही है? हाँ? नहीं रही। सब धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज्य नहीं किया? देवता धर्म की भी कैपिटल दिल्ली रही है। तो जो आसुरी राज्य आए, आसुरी धर्म आए, उनकी भी कैपिटल दिल्ली रही है तो सभी की कशिश होती है दिल्ली पर, और सबसे बड़ी भी दिल्ली है। एकदम सेंटर है तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि सब धर्मों का राज्य दिल्ली पर हुआ है, तो पाप तो जरूर हुए हैं। ना खून खराबा भी सबसे जास्ती दिल्ली में हुआ है, पाप आत्माएं बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, कोई पाप का काम नहीं करते, और बाप ही आकर के ऐसा पावन बनाते हैं। जिसके तुम यादगार में शिव जयंती मनाते हो, अभी जयंती अक्षर सभी से लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जयंती क्यों नहीं कहते है? अरे जयंती तो सभी की होती है, जो भी साकार होते हैं उन सभी की जयंती होती है। वो तो निराकार है, उनका जन्म भी दिव्य जन्म है, साकार मनुष्यों की सदस्य जन्म नहीं है, इसलिए जयंती नहीं कहना चाहिए। क्या कहते हैं? शिव महाशिवरात्रि। और रात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकता है। वो महाशिवरात्रि कब होती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब होती है? संगम में भी दो युग हैं, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो रात्रि क्या सतयुग आदि में कहें? संगम में कैसे मंगा? अगर संगम कहें तो काय काय का संगम है? कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि, तो कहेंगे संगम। तो क्या संगम पर शिवरात्रि होती है? महाशिवरात्रि कहें उसे? अरे जब सतयुग का आदि है, आदि हो गया माने सूर्य है, सूर्योदय हुआ या नहीं हुआ? सूर्योदय हुआ तो कहेंगे सतयुग का आदि। और जब सतयुग का आदि है तो संगम कहें, या उसके साथ ऐड करना पड़े कलयुग का अंत भी? दोनों हो तभी तो संगम कहें। तो आखिरी महाशिवरात्रि कब कहें है? और संगम भी 100 साल का छोटा मोटा तो है नहीं, तो कब कहें? 2036 में कहें? 76 में कहें? 76 में जितना अज्ञान अंधकार होता है उससे ज्यादा अज्ञान अंधकार कभी नहीं होता। एडवांस पार्टी में सन 76 में जितना अज्ञान अंधकार फैला हुआ था उससे ज्यादा अज्ञान अंधकार अभी नहीं फैला हुआ है। हाँ ना तो करो, फैला हुआ है ना। तो महाशिवरात्रि कहें? नहीं कह सकते। महाशिवरात्रि माना ही घोर कलयुग का अंत हो जाए। और युग परिवर्तन के लिए निमित्त तो कोई बनते हैं? कि बिना निमित्त के युग परिवर्तन हो जाएगा? कोई न कोई निमित्त बनते हैं। तो जो निमित्त बनने वाली आत्मा है, पहली पहली बार जब निमित्त बननी होती है उससे एक सेकंड पहले कहेंगे, क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि। सारी दुनिया, सभी धर्म वाले, सभी देश वाले तो घोर अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी टोटली अज्ञान अंधकार में होती है, और साथ साथ एडवांस पार्टी के भांति भी टोटली अज्ञान अंधकार में जब आ जाते हैं तब कहते हैं महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकता। सभी की जयंती अर्थात बर्थडे मनाते हैं, हर रात्रि थोड़ा ही मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? अरे रात्रि नहीं मनाते? किसकी? श्री कृष्ण की मनाते हैं कि नहीं? कै बजे जन्म मनाते हैं? रात्रि के 12 बजे कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं, और शिव बाबा की महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन कृष्ण की जयंती मनावेंगे, कृष्ण की फिर भी जयंती मनावेंगे, रात्रि नहीं मनावेंगे। क्यों? कृष्ण की जयंती मनावेंगे, रात्रि नहीं मनावेंगे। और शिव की रात्रि मनावेंगे, तो इसका कारण क्या है? कृष्ण साकार है और शिव निराकार है। तो तिथि, तारीख, मिनट, सेकंड आदि सभी लिखते हैं, कृष्ण की, शिव की तिथि तारीख कभी लिखेंगे नहीं। तो अभी यह है शिवरात्रि, इसका अर्थ तो समझ न सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते ये शिवरात्रि क्या है। जब जानते ही नहीं तो मनावे क्या? बाप ने समझाया रात्रि का अर्थ क्या है, क्या है? रात्रि का अर्थ है अंधकार। अरे हद का अंधकार या बेहद का अंधकार? बेहद का अज्ञान अंधकार। ये जो 5000 वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है। तो दुख का खेल जब पूरा होता है उस सेकंड क्या मनाते हैं, क्या मनावेंगे? हाँ जेल तो जेल है, जेल में अंधेरा ज्यादा रहता है, उजेला रहता है, है? वो तो बंद कर दिया जाता है, जैसे कुएं का मेंढक बंद है कुएं में, ऐसे जेल में रहने वाला भी जो कड़े कड़े कैदी होते हैं उनको तो और ही काल कोठरी में डाल देते हैं। तो दुख का अंत अर्थात अज्ञान अंधकार का अंत, इसको कहा जाता है दिन, उसको कहा जाता है रात। तो बाप दिन और रात के बीच में आते हैं। दिन कौन सा है? सत्य को त्रेता, सत्य को त्रेता की शुरुआत तो दिन हो गया, और रात द्वापर कलयुग का अंत। तो दोनों के बीच आधा कल्प है सूर्य, आधा कल्प है अंधेरा। भक्ति मार्ग में तो बहुत ही तिक तिक चल करते रहते हैं। क्या भक्ति मार्ग में क्या करते हैं है? बहुत ही तिक तिक करते रहते हैं। जो तिक तिक करते हैं, बहुत तिक तिक करते हैं, उनके द्वारा भक्ति मार्ग शुरू होता है। कौन है तिक तिक करने वाला? कार्तिक नाम रख दिया है। कार्तिक क्या? कार्तिक कर क्या? कर तिक तिक कर, भक्ति मार्ग की तिक करते रहेंगे। यहां तो समझने की सेकंड की बात है, गाड़ी होती है बैलगाड़ी, उसमें एक बैल होता है दाएं हाथ की ओर और एक होता है बाएं हाथ की ओर। जो दाएं हाथ का वो बैल होता है वो अच्छा माना जाता है, समझदार और पावरफुल बैल होगा तो उसको दाएं हाथ की ओर रखेंगे, और जो बाएं हाथ का होता है वो उसको जब घुमाएंगे तो कहेंगे टिक 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 टिक, और जो दाएं हाथ वाले को घुमाएंगे तो कहेंगे आ आ आ। तो देखो कैसी बातें बनाई हुई हैं। बुलाएंगे किसको? दाएं हाथ वाले को, और जब मोड़ देंगे तो टिक टिका लगाएंगे। अब तुम्हारा तो है सहज राजयोग, तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम में, तो मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, और फिर है जीवन बंद धाम। जीवन बंद में तुम कितना समय रहे हो ये बच्चे तुम जानते हो, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर ठीक है, परंतु उनों का है जिस्मानी योग और तुम्हारा है रूहानी योग अर्थात आत्मा का योग। सन्यासी लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते रहते हैं। ऐसे हठ योग सिखाते हैं जिस्मानी जो मनुष्य मुझ पढ़ते हैं। 26 अक्टूबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो कि तुम सभी बच्चों का बाप भी है, टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े, टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेते हैं तो पहले पहले बाप से योग होता है, फिर 5000 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना है। वो 5 वर्ष के बाद बच्चा बड़ा होता है तो फिर टीचर के पास बैठाया जाता है, टीचर से योग लगाना है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। तो तीन की मुख्य याद रहती है, जन्मदाता बाप की, पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर की, और वानप्रस्थ में जाने पर गुरु की। तो वहां तो उस दुनिया में अलग अलग होते हैं, यहां एक ही बार बाप आकर के बाप भी बनते हैं। ऐसे नहीं कि फिर दोबारा आएंगे तो टीचर बनेंगे, नहीं, तीसरी बार आएंगे तो सदगुरु बनेंगे, नहीं, एक ही बार आते हैं और उस एक बार आने में ही बाप भी, टीचर भी और सदगुरु भी। तो वंडरफुल बात है, ऐसे बाप को जरूर याद करना चाहिए। क्या पहचान दी हैं? ऐसे नहीं एक बार ब्रह्मा के रूप में आवे तो ब्रह्मा के द्वारा बाप आया, कहें कि तुमेव माता च पिता त्वमेव, नहीं, टीचर कहां बना, एक्सप्लेनेशन देने वाला कहां बना? मन बुद्धि की या शरीर की सदगति कहां हुई? यहां तो एक ही बार आते हैं, एक ही तन में मुकर्रर रथ में, और आकर के बाप भी तो टीचर भी तो सदगुरु का भी काम करते हैं। जन्म जन्मांतर तो तुम तीन को अलग अलग याद करते आए हो, और अभी तीनों रूपों को एक में याद करते हो। सतयुग में भी तो बाप से योग होता है, फिर बड़ा होता है बच्चा टीचर से योग होता है, वहां भी पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहां दरकार नहीं रहती है। क्यों क्यों नहीं रहती? वहां सदगति की दरकार है ही नहीं। क्या सदगति हुई पड़ी है? हैं? सत्युग में कहें कि सदगति हुई पड़ी है? हाँ, सदगति में सब आत्म की स्थिति में रहते हैं, देह की दुर्गति होती है, पांच तत्वों की दुर्गति होती है, लेकिन हम तो अपने को दुर्गति वाला देह समझते ही नहीं है। तो ये सभी बातें याद करने में तुमको क्या तकलीफ होती है? बिल्कुल ही सहज बातें हैं, इसको कहा जाता है सहज याद, परंतु है ये अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं भी थोड़े समय के लिए लोन लेता हूं, थोड़े समय के लिए है? क्या मतलब? 100 साल नहीं रहते संगम में है? रहते हैं, फिर थोड़े समय क्यों कहा है? नहीं, 47 से लेकर 68 तक की ये वाणी है ना, तो उस समय के लिए कहा मैं भी थोड़े समय के लिए ये लोन लेता हूं। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है, कहते भी है ना 60 तो लगे लाठ, ये ज्ञान की लाठी है, इस समय सभी को लाठ लगी हुई है। क्या क्या लगी हुई है? लाठ सभी को लगी हुई है, हैं? माने सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, लाठी ज्ञान की तो सभी को लगेगी, कोई को कम कोई को ज्यादा, सभी वानप्रस्थ निर्वाण धाम में चले जाएंगे, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वो है स्वीट होम, उनके लिए कितनी अथाह भक्ति तुमने की है। अभी चक्र फिर करके आए, मनुष्य योग कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही गपोड़ा लगाई दिया लाखों वर्ष का। लाखों वर्ष की बात हो फिर तो रिपीटिशन में ही मुश्किल हो जावे, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको विश्राम मिलता है, उसको कहा जाता है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये तो है स्थूल और वो है इन कॉर्पोरियल, मूल है स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटी रैकेट है। रैकेट क्यों कहा है? रिकॉर्ड कहा, रैकेट कहा, बैटरी कहा, ड्राइवर कहा, क्यों कहा? कोई कारण होगा ना, क्या कारण है? हैं? रॉकेट इसलिए कहा कि रॉकेट बहुत तेज उड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन वो तो बड़ा होता है और ये तो बहुत ही सूक्ष्म है। इसको तो एक स्थान से पृथ्वी के दूसरे स्थान तक, दूसरे छोर तक जाने में एक सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। क्या अभी अभी शरीर आत्मा छोड़े और बिलायत में जाके गर्भ में जन्म ले लेती? तो इनसे तीखा भागने वाला कोई होता ही नहीं है। ये सबसे तीखा रॉकेट है। एक सेकंड में शरीर छूटा और भागा, और दूसरा शरीर तो तैयार रहता ही है। तो ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, वो जो ड्रामा खेलते हैं उसमें तो कोई एक्यूरेसी नहीं है। ये तुम जानते हो, बाप भी कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है, है? कैसे मालूम पड़ता है? ज्ञान समझाते हैं मुकर्ररत है। ये और एक मुसीबत, ये कैसे पता चले कौन सा मुकर्ररत है, है? ज्ञान के आधार से आशाराम बापू आते हैं, वो नहीं ज्ञान सुनाते। तो जितने भी आते हैं महात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म पिताएं, ज्ञान तो कुछ न कुछ सुनाते ही हैं। तो जो भी आके ज्ञान सुनाते हैं सबको भगवान मान लें, बाप मान लें, फिर ऐसा ज्ञान कोई आकर नहीं समझाता जिसका काट कोई न कर सके। क्या भगवान तो आकर ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिसका कोई भी धर्मगुरु धर्मात्मा आकर के आमने सामने काट करने से ही डरते हैं। तो पूछा, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं। कैसी नॉलेज? कैसी नॉलेज? वो साधारण धर्म पिताओं धर्मगुरुओं जैसी नॉलेज नहीं, उसको तो काटा जा सकता है। उनकी बोली हुई बातों को काट किया जाता है। भगवान तो जो बोलते हैं वो अकाट्य नॉलेज है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, सबको सबको नहीं समझाते हैं। क्या जल रहा है? शिवरात्रि भी मनाते हैं। मैं शिव कब आता हूं, कैसे आता हूं, वो तुमको भी पता नहीं है। ये क्यों हुआ है, बोलो, ये क्यों कह दिया? मैं शिव कब आता हूं, कैसे आता हूं, वो तुमको भी पता नहीं है। पता नहीं है? हाथ उठाओ। अच्छा है, किनको पता नहीं है? हाथ उठाओ। सबको पता है। माने बाबा झूठा बोलता है, है? बाबा ने कहा तुमको भी पता नहीं है, और यहां तो हाथ कोई नहीं उठाता। माने सबको पता है, तो शिव बाबा झूठे, और जो जो हाथ नहीं उठा रहे हैं वो सब सच्चे हो गए? अरे बाबा कहते हैं तो सही बात होगी ना। कैसे है सही? इक्कीस तिथि तारीख नहीं पता क्यों? अब तो तिथि तारीख पता नहीं पड़ गई है? तिथि तारीख का पता नहीं पड़ा?
आने के बाद मालूम होगा। आने के बाद मालूम।
तिथि तारीख तो पता पड़ गई, तिथि का भी पता पड़ गया, तारीख का भी पता पड़ गया। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या नहीं मनाया है? तो तिथि तारीख पता चली है, वर्ष का पता चला, तिथि तारीख का तो पता नहीं चला। लेकिन ऐसा भी टाइम आवेगा कि तिथि तारीख महीना सप्ताह दिन सब पता चल जाएगा। अब ये वाक्य साबित कैसे हो सच्चा? भगवान का बोला हुआ महावाक्य है, पत्थर की लकीर है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, तो ये झूठा वाक्य बोला है या सच्चा बोला? सच्चा सच्चा भी है, फिर तिथि तारीख का पता भी नहीं है। पता है? पता नहीं है, फिर कहो ना। अरे सीधी सी बात, जिस समय ये वाणी चलाई गई है उस समय ये बात प्रत्यक्ष नहीं थी। अभी तो एडवांस ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, अभी तो हमें सब बात का पता लग चुका है, इसलिए उस समय की वाणी की बात अलग है और अब की बात अलग है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की रात्रि नहीं मनाते हैं। ये क्या बात हो गई है? इसमें भी कोई राज होना चाहिए ना है? क्या राज है? हैं? अरे शिव की रात्रि तो इसलिए मनाते हैं कि वो संसार में अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में प्रत्यक्ष होता है। ये बेहद की बात है, हद का जन्म लेने की बात नहीं है। और कृष्ण रात्रि मनाते हैं उसका कारण यह है कि वो कोई साकार जन्म के मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा अंत तक भी, जब तक पढ़ाई का अंतिम चरण चलता है तब तक अज्ञान अंधकार में ही रहती है, क्योंकि सृष्टि का पहला पत्ता है। पहले पत्ते का उद्धार नहीं होगा तो 500 करोड़ में से कोई का भी उद्धार नहीं हो सकता। तो इसलिए कृष्ण की भी रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि राम की आत्मा तो संचत्तर में जब बाप की प्रत्यक्षता होती है उस समय से ही असलियत उसकी बुद्धि में आ जाती है, रोशनी आ जाती है। कृष्ण की आत्मा उस रोशनी को फिर भी ग्रहण नहीं कर पाती, तो राम की नहीं मनाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ गया ना काय में, समझने समझने में, बुद्धि में फर्क पड़ गया। शिवरात्रि में कृष्ण की भी मनाई जाती है, तो रोला हो गया है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों को कितना झूठ कर दिया है। मां बाप झूठे तो सारी रचना झूठी हो गई, वहां तो है ही सच, और यहां है आसुरी रावण संप्रदाय। तो ये समझने की बातें हैं। और ये तो है बाबा, बूढ़े को बाबा कहेंगे ना, कौन है बाबा है, ये ब्रह्मा। छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे है। सत्युग में जो कृष्ण जन्म लेगा उसको बाबा कहेंगे नहीं, तो संगम युग में वो ही छोटा बच्चा बाबा, जिसका नाम है दादा लेखराज। कोई कोई प्यार से छोटे बच्चे को भी बाबा कह देते हैं। तो इन्होंने भी कृष्ण को प्यार से कह दिया है बाबा। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़ा हो और फिर बच्चे के भी बच्चे हो। क्या कहा? ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। कृष्ण तो खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहां से आए? बाप खुद कहते हैं मैं बुजुर्ग तन में आता हूं। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सभी बातें एक्यूरेट नहीं होती हैं, कोई कोई बात ठीक भी होती है। ब्रह्मा की आयु माने प्रजापिता, ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना। क्या कहा? नोट करो। क्या? क्यों? ब्रह्मा की आयु अलग, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु अलग। ब्रह्मा की आयु को प्रजापिता ब्रह्मा की आयु क्यों कहेंगे है? अरे ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु, और प्रजापिता ब्रह्मा की, ब्रह्मा की 100 साल आयु किस आधार पर कहेंगे? कोई हिसाब है? हैं? 47 में प्रवेश किया, ठीक है 60 साल हुए हैं? 89 में 100 साल हो गए, फिर गुलजार दादी में क्यों आ रहे हैं? सूक्ष्म शरीर अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हैं? तो फिर उनकी आयु की तो बात ही नहीं है, तो किसकी आयु की बात है? हाँ, ब्रह्मा की आयु माने प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना। वो तो जरूर इस समय होगी। किस समय है? जब भी ये वाणी चल रही है उस समय भी होगा प्रजापिता ब्रह्मा। तो बोला प्रजापिता ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो गई है? कब? 76 में प्रजापिता ब्रह्मा की आयु खत्म हो गई। अरे आयु खत्म हो गई? आयु आत्मा की होती है या शरीर की होती है? फिर कैसे खत्म हो गई? अरे कहां कहां फंस जाते हैं? हाँ, शरीर भी दो प्रकार के हैं। एक है एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर की आयु जो है वो भी पूरी हुई 76 में, और मनन चिंतन मंथन वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसकी भी आयु 76 में पूरी हो गई। तो बीज रूप स्टेज बन गई। इस मुरली में भी बोला है लक्ष्मी नारायण का राज्य कब आवेगा? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इनका जन्म हुआ। तो देखो मृत्यु लोक में ब्रह्मा की आयु खत्म होती है ना, 76 में मृत्यु लोक पूरा हुआ। अब वो आत्मा मन बुद्धि से कहां निवास करेगी है? अमर लोक में। अमर लोक आ गया 76 में है? हाँ, मन बुद्धि की बात है कि वो आत्मा मनन चिंतन मंथन की दुनिया में ऐसे मस्त रहती है कि उसको मृत्यु का, जो बेहद की मृत्यु है जो सभी मनुष्य मात्र की होती है, निश्चय और अनिश्चय, वो नहीं होगी। मृत्युलोक पूरा होता है तो वहां मृत्युलोक सतयुग में तो नहीं होता है, ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म होगी। तो ये कोई अमर लोक नहीं है, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सिवाय तुम बच्चों के और किसी की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। तुम 84 जन्म लेते हो, कैसे लेते हो सो भी तुमको पता पड़ गया है? पता पड़ गया? नहीं पता पड़ा? अरे पड़ गया, पता पड़ गया। पहला जन्म कौन सा होगा? कौन से देवता का पहला जन्म होगा? अरे पहला जन्म तो पता पड़ गया होगा, दूसरा तीसरा तो 84वां तो है ही, चल ही रहा है। लेकिन जो बीच के हैं ना पता चले, पहला जन्म तो पता पड़ गया होगा है? हर एक युग की आयु 1250 वर्ष, और तुमने हर युग में इतने इतने जन्म लिए, 84 का जन्म का हिसाब तो बता दिया ना, 84 लाख का तो हिसाब हो ही नहीं सकता है। तो इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की बात याद ही नहीं रहेगी किसी को, यहाँ कितना परम अपार दुख है। बिच्छू टिंडर मिसल बच्चे पैदा होते रहते हैं, ऐसे क्यों कहा है? बच्चा आप ऑपरेशन करते हैं पेट फाड़ के, बिच्छू बच्चा कैसे पैदा करता है? बिच्छू जब बच्चे पैदा करती है तो उसका पेट फट जाता है, तो इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। तो बच्चे जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पाप कट जाए तो हम महान पुण्यात्मा बन जाएंगे। अभी कोई पाप नहीं करना है, एक दो पर काम कटारी चलाना ये तो आदि मध्यंत दुख देना है। अभी रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत, अभी महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि 2500 वर्ष नहीं होगी, कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाएगा। यज्ञ तब रचते हैं जब उसमें हवन करते हैं, बची खुची सामग्री सब हवन में स्वाहा कर देते हैं। किसका नाम लेकर है? आखिरी सामग्री जो होती है वो शंकर की डाली जाती है। अभी बाप ने समझाया है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता क्या? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, नारायण ज्ञान यज्ञ या विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। 26/10/67 की वाणी का तीसरा पेज, रुद्र शिव बाबा को कहा जाता है। क्या शिव बाप को कहा जाता है कि शिव बाबा को है? शिव बाबा को कहा जाता है। रुद्र की माला कहते हैं ना, शिव की माला थोड़ी कहते हैं। फूल है रुद्र, फिर है युगल, मेरु, माला भी युगलों की है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग बाद में स्थापन होता है। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग का रसम रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वो तो बरोबर घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। तो नाम पड़ता है सन्यासी। क्या नाम पड़ा? सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी। अरे किसका त्याग करते हैं? हर्थ एंड होम, घर बार का त्याग करते हैं। खाली हाथ निकलते हैं ना। पहले तो उनकी गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे, ढेर सारा काम कराते थे। असल में सिर्फ आटा ले जाते थे, रसोई नहीं लेते थे, पकी पकाई। उनों को वन में ही रहना पड़ता था, वन में ही कंदमूल फल मिलते रहते हैं। तो ये भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते थे तब कंदमूल फल खाते थे। अभी तो बात मत पूछो, देखो क्या क्या करते रहते हैं, कितना तला तलाया माल खाते हैं। देखा जाता है छोटेपन में भी बहुत गुरुओं से खराब हो पड़ते हैं। ये दुनिया तो ऐसी है, बाप भी गंदा बनाए देते हैं। इनका नाम ही है विशेष वर्ड और वो है वाइसरस वर्ड। तो अपन को विशेष समझना चाहिए ना। ये वैश्यालय है, बाप कहते हैं सतगुरु पर मेरा नाम रखा हुआ है शिवालय। वॉइसलेस वर्ड बनाना बाप का काम है। यहां तो सभी पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया। तो बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो बेहद के बाप के बच्चे, वो तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। फिर रावण राज्य होता है, तुमको जो बाप से वर्षा मिला है वो तो 21 पीढ़ी चला। अब 21 पीढ़ी पूरी हो गई, ये तो तुम्हारी अच्छी रीति समझ में आ गया। लाखों वर्ष की बात होती तो तुम समझ भी नहीं सकते। स्कूल में बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अधूरी पढ़ते हैं। सारे दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो इस्लामी बौद्ध धर्म कितना समय चला? बाकी दो युगों को लाखों वर्ष कह दें तो पता ही नहीं पड़े। मनुष्य कितना चिट्ठियों में सल हो जाएंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, पाप कटने के लिए तुम बुलाते आए हो। साधु संत आदि पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन आओ तो अर्थ समझना चाहिए ना। क्या अर्थ समझना चाहिए? हैं? बाप अगर आवेंगे द्वापर में आवेंगे या कलयुग में आवेंगे तो क्या करेंगे? पतितों को पावन बना देंगे। वो भी नहीं समझते, ये भी नहीं जानते कि पतित कौन होता है और पावन क्यों नहीं जानते। सन्यासी नहीं जानते पतित कौन होता है, पावन कौन होता है। गांधी जी नहीं जानते थे पतित पावन सीताराम कहते रहते थे। हैं? जानते थे पतित माने क्या? भिखारी माने क्या?
शक्ति छीन हो जाए उसको पतित कहते।
हाँ, पतित माने ये गिर गया, ये ऊपर जा रहा है और अब ये गिर गया तो ये क्या हुआ? पतित हो गया। माने शक्ति छीन होती रहे तो पतित। क्या? विकारी। वि माने विपरीत। कार्य माने कार्य, कैसा कार्य? ऊपर की ओर ले जाने वाला कार्य नहीं, नीचे गिराने वाला कार्य। तो शक्ति अगर नीचे चली गई तो पतित, और शक्ति लगातार कुछ भी करे, जैसे बाबा कह देते हैं बल कर्मेंद्रियों से तुम कोई भी कर्म करो फिर भी पतित ना बनो। अरे कोई को बुद्धि में बात बैठती है? हैं? बैठती है? हैं? नहीं बैठती। असलियत तो ये है कि शक्ति जो आत्मा की है वो अधोपतन में जाए तो पतित, और तो ऊर्ध्वरेता बने तो पावन। ओम शांति।